जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय श्री श्री गौरताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद सिंह देव की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। श्री चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय। श्रीमती रुक्मिणी देवी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेम All glories to Simranti Devotees, all glories to Simranti Devotees, all glories to Simranti Devotees, all glories to Sri Guru and Guru Vidya. Hare Krishna, आप लोग और आगे आ जाइए, बहुत दूर बैठे हैं, सब लोग कृपा करके आगे आइए। आज बहुत ही पवित्र दिन है और हम उस कथा को सुनेंगे जो बहुत ही पवित्र है। कोई बात ना करें, बिल्कुल शांत रहेंगे सब लोग। आज रुक्मिणी महारानी का आविर्भाव दिवस है तो उस उपलक्ष्य में हम जो कथा सुनेंगे, बहुत लंबी कथा है तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। ये कथा सुना रहे हैं नारद जी। कौन सुना रहा है कथा? नारद जी सुना रहे हैं। और सुन रहे हैं महाराज जनक, मिथिला के राजा महाराज जनक सुन रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कि हे राजन, अब आप सर्व पाप नाशक, सुनिए कथा। श्री कृष्ण का विवाह है, श्री कृष्ण के विवाह की कथा सुनिए जो सर्व पाप नाशक है, पवित्र है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ प्रदान करने वाला श्री कृष्ण का विवाह है। सुनिए, विदर्भ प्रदेश में कुंडिनपुर के राजा भीष्मक राज्य करते थे। क्या नाम था राजा का? भीष्मक नाम था। साक्षात लक्ष्मी के समान उनकी कन्या थी रुक्मिणी। राजा की पुत्री थी, करुण चंद्रमा के समान सुंदर कन्या, और सभी गुण थे, सभी गुण उसमें थे। एक बार मेरे मुख से श्री कृष्ण के गुणों को उसने सुना, कभी दर्शन नहीं किया कृष्ण का। ये मेरे मुख से, मेरे मुख मतलब किसके मुख से? नारद जी के मुख से। नारद जी के मुख से श्री कृष्ण के गुणों को सुना और परिपूर्णतम श्री कृष्ण को ही अपना पति मान बैठी, अपना पूरा हृदय श्री कृष्ण को दे दिया। उसी प्रकार मेरे मुख से रुक्मिणी के गुणों को सुनकर श्री कृष्ण ने भी उसे अपनी योग्य पत्नी मान करके उसके साथ विवाह करने का विचार किया। तो दोनों ने नारद जी के मुख से ही सुना। श्री कृष्ण का मनोभाव जानने वाले सर्वधर्मज्ञ राजा भीष्मक ने श्री कृष्ण को ही अपनी पुत्री प्रदान करने का निश्चय किया। राजा भीष्मक ने भी यही विचार किया। राजा भीष्मक पिछले जन्म के महाराज जनक हैं और रुक्मिणी जी पिछले जन्म की सीता हैं और श्री कृष्ण पिछले जन्म में राम हैं। किंतु श्री कृष्ण का शत्रु भीष्मक का पुत्र रुक्मिणी ने बड़े यत्न से श्री कृष्ण के विवाह की बात को टालकर शिशुपाल को उत्तम वर माना। शिशुपाल पिछले जन्म का रावण। अब रुक्मिणी कितना दुष्ट है कि सीता का विवाह किसके साथ करना चाहता है? रावण के साथ। तो ये जानकर रुक्मिणी का मन खिन्न हो उठा कि कहाँ सीता का विवाह राम के साथ निश्चित हुआ है और कहाँ उल्टा क्या हो रहा है। सीता का विवाह किसके साथ हो रहा है? रावण के साथ हो रहा है। रुक्मिणी का मन खिन्न हो उठा। उसने अपना एक ब्राह्मण दूत श्री कृष्ण के पास भेजा। जब वो ब्राह्मण दूत द्वारकापुरी में पहुँचा तो श्री कृष्ण ने उसका पूजन किया। उसने श्री हरि के भवन में जाकर भोजन किया, विश्राम किया। कितना सौभाग्य उस ब्राह्मण का, कितना सौभाग्य है कि कृष्ण के घर में भोजन किया और विश्राम किया। भगवान ने जब ब्राह्मण से कुशल प्रश्न पूछा तो उसने सारा वृत्तांत सुनाया। रुक्मिणी का पत्र बांचता हुआ वो बोला, रुक्मिणी का पत्र उसने पढ़ करके सुनाया। किसने?
ब्राह्मण
ने सुनाया कि समस्त विभूतियों से विभूषित श्री कृष्ण को मेरा करोड़ों प्रणाम है। यहाँ सब कुशल है, आपके यहाँ भी कुशल होना चाहिए। आपका पत्र मिला, महामुनि नारद के कथन के अनुसार प्रकृति से परे आप परम पुरुष को मैं जान सकी। यद्यपि सर्वज्ञ होने के नाते आप सब कुछ जानते हैं, तथापि मैं कुछ रहस्य की बात बता रही हूँ। मुझे वीर भोग किया समझकर आप मेरा पानी ग्रहण करिए। आप सिंह हैं सो आपके भाग को कहीं गीदड़ शिशुपाल ना ले जाए। आप सिंह हैं और आपका भाग गीदड़ शिशुपाल ना ले जाए। यदि आप कहें कि किले के अंदर रहने वाली आप राजकुमारी का पानी ग्रहण मैं कैसे कर सकता हूँ, तो मैं उपाय बताती हूँ। विवाह से एक दिन पूर्व मेरे यहाँ कुल देवी की बड़ी पूजा होती है, उसी के निमित्त मैं वहाँ आऊँगी, वहाँ ही आप मेरा पानी ग्रहण कर लें। नारद जी बोले, ब्राह्मण द्वारा रुक्मिणी का मनोभाव जानकर श्री कृष्ण ने दारुक सारथी से कहा कि शीघ्र रथ तैयार करो। रात को पिछले पहर वैकुंठ धाम में बने रथ के द्वारा कृष्ण चले। ये रथ जो कृष्ण का है कहाँ पर बना है? वैकुंठ धाम में, मैन्युफैक्चर्ड इन वैकुंठा। उस रथ से भगवान कृष्ण चले। सोना और रत्नों से खचित अगणित किंकणियों से सजे दिव्य रथ में सैम्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नाम के चार घोड़े जुते। भगवान के चार घोड़े इनके नाम भी हैं। उस दिव्य रथ का तेज हजार सूर्यों जैसा, कैसा रथ है? हजार सूर्यों जैसा चमकीला है। सारथी की पीठ पर पांव रखकर भगवान रथ पर चढ़े। सारथी पर एक घोड़ा बना है? सारथी घोड़ा बना और भगवान उसकी पीठ में पैर रख करके रथ पर चढ़े। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का हाथ थाम कर रथ पर चढ़ाया, ब्राह्मण को अपने हाथ के सहारे रथ पर चढ़ाया और वहाँ से विदर्भ देश को प्रस्थान किया। राजाओं की भीड़ से कन्या का हरण करने के लिए श्री कृष्ण अकेले गए। ये समाचार सुनकर भाई के सहायक बलदेव युद्ध की आशंका से यादवों की सेना लेकर के पीछे पीछे चल पड़े। बलदेव जी को पता चला कि कृष्ण अकेले गए हैं और बहुत राजा शत्रु हैं, युद्ध तो जरूर होगा और कृष्ण गए अकेले तो युद्ध की आशंका है। तो बलराम जी जो है यादवों की सेना लेकर के आ गए पीछे पीछे। उन्हें आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं, बड़े भाई इसलिए बड़े भाई बने कि उनको सेवा करने में आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। उधर श्री कृष्ण कुंडिनपुर के उपवन में घोड़े की झूल बिछाकर ब्राह्मण के साथ इमली के वृक्ष के नीचे बैठ गए। घोड़े की झूल भगवान ने इमली के पेड़ के नीचे बिछाई और बैठ गए।
क्या करना
है? चाबी का छल्ला, चाबी इनकी थी, चाबी चाबी का छल्ला।
नहीं तो किसने बोला था आपको?
अनाउंसमेंट मैनेजर सिक्योरिटी गार्ड के पास।
सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है जो जिसके पास चाबी मिली है? सिक्योरिटी गार्ड चाबी जिसको मिली है, चाबी किसको मिली है? तो भगवान कौन से पेड़ के नीचे बैठे हैं? इमली के पेड़ के नीचे बैठे हैं। और क्या बिछा कर बैठे हैं? घोड़े की झूल, घोड़े की झूल बिछा करके बैठे हैं। वहाँ दूर से ही कुंडिनपुर दिखाई दे रहा है जिसमें सात योजन विस्तृत गोल किला है। सात योजन का मतलब 12, 17, 84 किलोमीटर का जो है किला है। कितना बड़ा किला है? 84 किलोमीटर का किला है। उसमें 100 धनुष चौड़ी नदी के समान खाई है, बहुत बड़ी खाई है। सौ धनुष चौड़ी खाई है, 50 हाथ ऊंची केले की चार दीवारी, 84 किलोमीटर की चार दीवारी है, 50 हाथ ऊंची चार दीवारी है, और दिव्य अट्टालिकाएं जिनके ऊपर सोने के कलश हैं, उसमें सुनहरी ध्वजाएं हैं, पताकाएं दरवाजे और छज्जे हैं जिन पर कबूतर और मोर बैठते हैं। राजा भीष्मक ने शिशुपाल को अपनी कन्या देने के लिए रत्न मंडप में विवाह की सामग्रियां एकत्र की हैं। महिलाओं के मांगलिक गीतों की धुन से उत्तम भवन मुखरित हो रहा है। उस भवन में रुक्मिणी वैसी शोभित हो रही हैं जैसे सिद्धियों से पृथ्वी की शोभा होती है। वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों ने शांति पाठ करके रुक्मिणी को सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर मंत्रों से रक्षा सूत्र बांधा। लाख भार सोना, देखो कितना दान दिया है, 1 लाख भार सोना और 2 लाख भार मोती, 1000 भार वस्त्र, 60 करोड़ गौ, ये सब इतना दान दिया है राजा भीष्मक ने। 10,000 हाथी, 10 लाख रथ, 10 करोड़ घोड़े, गुड़ और तिल के पर्वत, 1,000 सोने के पात्र, 10,000 आभूषण राजा भीष्मक ने दान ब्राह्मणों को दिए। उसी प्रकार राजा धर्मघोष के पुत्र शिशुपाल के लिए भी रक्षाबंधन वाली शांति कराई गई। ब्राह्मणों ने उसको मंगल स्नान कराया। पीले जामे से शोभित मुकुट के ऊपर शुभ फूलों का बना सेहरा बांधा। यानी रावण सीता के साथ विवाह करने की तैयारी कर रहा है। शिशुपाल कौन? रावण है। हार कंकण केयूर चूड़ा मणि से विभूषित करके मंगल गीत बाजे गंध और अक्षतों से उसको सजाया। शिशुपाल को सुंदर वर बनाया गया और राजा दमघोष उसे एक ऊंची हथनी पर बिठाकर महल से बाहर निकला। अब उसकी रक्षा के लिए कौन कौन है? बहुत राजा है। रावण का सीता के साथ विवाह कराने के लिए जो बिल्कुल तैयार है। जरासंध, राजा साल, दंतवक्र, विदुरथ और पौंड्र, इन सब राजाओं के साथ बहुत बड़ी सेना लेकर कि जरासंध आया है कुंडिनपुर में। पहले से भगवान कृष्ण के विचार का समाचार सुनकर अन्य हजारों राजा शिशुपाल की सहायता के लिए आए कि कृष्ण आएंगे रुक्मिणी का अपहरण करने के लिए, लेकिन हमें कृष्ण को अवसर नहीं देना है रुक्मिणी का अपहरण करने का। सब राजा जो है पूरी तैयारी करके साथ आए। ये खबर सुनकर राजा भीष्मक ने आगे बढ़कर उनकी विधिवत पूजा की और कश्मीरी कंबल और लाल मोतियों की माला से सजाकर शिविरों को सुगंधित किया। उस समय नर्तकियों का नृत्य हो रहा था, मृदंग बज रहा था और राजा भीष्मक ने उनको अपने नगर में प्रविष्ट कराया। अब नारद जी कहते हैं कि हे राजन, रुक्मिणी श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करती है, बहुत चिंता कर रही है। उसकी चिंता को कौन जानता है? कि सब तैयारी में लगे हैं रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ करने के लिए, लेकिन रुक्मिणी को जो चिंता हो रही है उसे कौन जानता है? वो सब कुछ मिथ्या मान रही है, केवल घनश्याम का चिंतन करती हुई कहने लगी। ध्यायन्ति कृष्ण पादाब्जं भैस्मी कमल लोचना मोघं वा मनुते वार्तां मेघश्यामं अचिन्तयन्। हाय, मेरे विवाह को केवल एक रात शेष रह गई है किंतु श्री कृष्ण नहीं आए हैं। रुक्मिणी चिंता कर रही है, हे विधाता, ना जाने क्यों वो ब्राह्मण भी अब तक नहीं लौटा है। श्री कृष्ण ने मुझ में कोई खूट देखा, इसलिए उन्होंने मुझे मेरे विचार को उन्होंने कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया, इसी से वे नहीं आए। अब मैं क्या करूं? हाय, मुझे अभागिनी के लिए विधाता अनुकूल नहीं है। शंकर जी, गणपति, गौरी, गौ और ब्राह्मण भी मेरे विरोधी हैं। ऐसा सोचती रुक्मिणी अटारी पर बहुत ऊंचे चढ़कर किसके बच्चे शोर कर रहे हैं यहाँ पर? किसका बच्चा है ये शोर कर रहा है? आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपके बच्चे शोर नहीं करेंगे। किसके बच्चे शोर कर रहे हैं यहाँ पर? इनको बाहर ले जाइए या शांत करिए, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चे खेलेंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं, शोर नहीं करेंगे। ऐसा सोचती रुक्मिणी अटारी पर बहुत ऊंचे चढ़कर श्री कृष्ण की राह देख रही है। अकेली है, कन्या अकेली है। उसी समय उसका बायां अंग फड़क करके सूचना देने लगा कि श्री कृष्ण आ गए हैं। रुक्मिणी का बायां अंग क्या है? स्त्री के बायां अंग शुभ होते हैं, तो बायां अंग फड़के तो उनको रुक्मिणी को विश्वास हो गया कि कृष्ण आ गए हैं, और कोई दूसरा शुभ है ही नहीं। रुक्मिणी और कोई शुभ या मंगल नहीं समझती अपना, तो रुक्मिणी के बायां अंग फड़के इसका मतलब है कि कृष्ण आ गए हैं, क्योंकि और कोई दूसरा शुभ नहीं है। उसी समय श्री कृष्ण का भेजा हुआ ब्राह्मण दूत भी आया। उसने धीरे धीरे श्री कृष्ण के आगमन का समाचार बता दिया, धीरे धीरे, यानी किसी को पता ना चले। इससे प्रसन्न होकर लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी ब्राह्मण को प्रणाम करके कहने लगी कि हे ब्राह्मण, आपके वंश से मैं कभी नहीं जाऊंगी, आपके वंश में हमेशा मैं रहूंगी, ये मेरी वाणी सत्य है। बलराम और श्री कृष्ण मेरी पुत्री का विवाह देखने आए हैं। ये सुनकर राजा भीष्मक ब्राह्मणों को साथ लेकर उनकी अगवानी करने आए। कृष्ण बलराम मेरी पुत्री का विवाह देखने आए हैं, ये सुनकर राजा भीष्मक भी चाहते हैं, क्या चाहते हैं? कि मेरी पुत्री का कृष्ण अपहरण कर लें, क्योंकि वे भी विवश हैं कि उनको विवाह शिशुपाल के साथ करना पड़ रहा है। तो वे भी चाहते हैं कि कृष्ण अगर मेरी पुत्री का अपहरण कर लें तो बहुत अच्छा है। तो कृष्ण का जो है वो स्वागत कर रहे हैं। मांगलिक पात्रों में गंध, अक्षत, जौ, खीर, वस्त्र, रत्न रखकर गाजे बाजे के साथ आगे बढ़े। करुणों मधुपर्क की घट अर्पण करने के बाद श्री कृष्ण बलराम की विधिवत पूजा की। तब ये सोचने लगे कि मैंने अपनी कन्या श्री कृष्ण को नहीं दी। ऐसा विचार करके खिन्न मन वाले भीष्मक उन दोनों भाइयों को आनंद वन में टिकाकर अपने घर चले आए। तीनों लोगों के सौंदर्य, श्री कृष्ण के आगमन का समाचार सुनकर कुंडिनपुर के सभी निवासी आनंद वन में आए दर्शन करने के लिए, और मुख कमल का सौंदर्य जी भरकर अपने नेत्र अंजलियों से पिया। नेत्र की अंजलि है, कोई पानी होता है तो अंजलि से पीते ना, लेकिन कृष्ण के सौंदर्य का जो अमृत है वो नेत्र की अंजलियों से पिया। तब वे सब परस्पर कहने लगे, रुक्मिणी श्री कृष्ण की ही पत्नी होने योग्य है, अन्य किसी की योग्य नहीं है। सब निवासी कह रहे हैं, यदि हमारे पूर्व जन्म का कुछ पुण्य बचा है तो उसके बदले हम ब्रह्मा से यही वरदान मांगते हैं कि रुक्मिणी का पाणि ग्रहण श्री कृष्ण ही करें। अब कैसे हो सकता है अपहरण करके? तो सब जनता भी चाहती है कि कृष्ण अपहरण कर लें रुक्मिणी का, है? हमारा अगर पुण्य हो तो हमारे पुण्य के बल से कृष्ण जो है रुक्मिणी का अपहरण कर लें। इससे ये जब कभी अपने ससुर के घर आएंगे तो हमें इनके दर्शन मिल जाएंगे। हमारा तो यही फायदा है कि ससुराल में आएंगे तो हमें इनके दर्शन मिलेंगे, हाँ। तो इसलिए हमारा पुण्य, हाँ, जो है अगर जितना भी हो उससे कृष्ण जो है रुक्मिणी का अपहरण कर लें, जिससे हम कृतार्थ हो जाएंगे। संसार में इनका दर्शन पाकर विशेष जीना किस काम का? कुंडेपुर के निवासी ऐसा बोल रहे हैं, इनके दर्शन पाकर के विशेष जीना किस काम का? हे राजन, ये सब पुरवासी परस्पर ऐसा कह रहे थे तभी पार्वती का पूजन करने के लिए सखियों के साथ रुक्मिणी वनवास से बाहर निकली। तो एक दिन पहले बताया था, तो एक रात पहले जो है ये पूजा के लिए निकली। उस समय भी रुक्मिणी का मन श्री कृष्ण में लगा था। तब भेरी, मृदंग, बहुतेरी, दुंदुभियाँ बज रही थी, गायक बंदीजन गा रहे थे और वेश्याएं नाच रही थी, जन साधारण के लोग जय जयकार कर रहे थे। उस समय रुक्मिणी 1 करोड़ चंद्रमा की का सौंदर्य धारण किए और चमकते कुंडल उनके कानों में झूल रहे थे। अनुचर रुक्मिणी पर श्वेत चमर, छत्र, पंखे झल रहे थे। म्यान से निकली नंगी तलवार लिए लाखों पैदल सैनिक आगे आगे चल रहे थे। नंगी तलवार लिए रुक्मिणी की रक्षा के लिए नंगी तलवार लेकर के लाखों सैनिक आगे आगे चल रहे हैं। उनके पीछे घुड़सवार उनके पीछे रथी, उनके पीछे हाथी। इस प्रकार रनिवास से गौरी मंदिर तक खड़े वीर रक्षा कर रहे थे। रुक्मिणी देवी मठ में पहुंचकर एक सुंदर चबूतरे पर बैठी और जल से अपने हाथ पैर धोए, फिर मंदिर के भीतर जा हाथ जोड़कर भगवती की स्तुति करने लगी। वे बोली, हे दुर्गे, हे शोभे, हे भवानी, मैं आपके पुत्र गणपति और आपकी वंदना करती हूँ। हे माता, आप ऐसा कुछ करिए जिससे परमेश्वर भगवान कृष्ण मेरे पति बने। रुक्मिणी जी प्रार्थना कर रहे हैं। उसी समय सखियों ने टोका, हे देवी, ऐसा मत कहो, बल्कि एक हो कि शिशुपाल मेरे पति बने। सखियों के ऐसा कहने पर रुक्मिणी उसी मंदिर में पुनः बोली, हे अंबिके, ये बालिका कुछ नहीं जानती। और सखियां ऐसा कह रही हैं, ये बालिका कुछ नहीं जानती और सखियां ऐसा कह रही हैं। तब उन्होंने गंध अक्षत, पुष्पमाला, धूप दीप, नैवेद्य, वस्त्र आभूषण, बलि, पुए, पान, फल और ईख से देवी की पूजा की। फिर सुहागिन स्त्रियों का पूजन और प्रणाम किया। इससे वे सब सौभाग्यवती स्त्रियाँ मंगल मैं आशीर्वाद देती हुई कहने लगी, हे देवी रुक्मिणी, रानी सतरूपा के सदृश तुम्हारा रूप और पार्वती के समान तुम्हारा शील हो, तुम अरुंधति के समान पतिव्रता बनो, सीता की तरह तुम में क्षमा शक्ति हो, देवी दक्षिणा के समान तुम्हारा सौभाग्य चमके, इंद्राणी के समान तुम्हें वैभव प्राप्त हो, सरस्वती के समान तुम्हारी वाणी हो और संतों में जैसी ईश्वर भक्ति होती है वैसी तुम्हारी भक्ति पति में हो। शुश्रूषणम भरदूरति समम समाई भूयान जनकात्मजा समा सौभाग्यमेवम तव दक्षिणा समम स्वैभवम भीष्म सुते सची समम सरस्वती ते च सरस्वती समा भक्ति पदोस्याच्च सतां हरो यथा। नारद जी कहते हैं, हे राजन, उन ब्राह्मण ब्राह्मणियों के आशीर्वाद सुनकर रुक्मिणी ने पुनः उन ब्राह्मणियों को प्रणाम किया। इसके बाद मौन व्रत त्याग कर रुक्मिणी गिरजा के मंदिर से धीरे धीरे बाहर निकली। अब धीरे धीरे बाहर निकल रही हैं, चिंतन कर रहे हैं किसका, कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं, हैं कि कृष्ण और कृष्ण के बिना उनको एक एक जो पल है वो युग के जैसा लग रहा है। और समय की सखियाँ उनके साथ थी। करोड़ चंद्रमा जैसी सुंदर कमल नयनी रुक्मिणी को अकस्मात वहाँ के वीर राजाओं ने इस प्रकार देखा जैसे निर्धन धन को देखते हैं। घुड़सवार, रथी, हाथी सवार और जितने पैदल सैनिक खड़े थे रुक्मिणी को देख करके मोहित हो गए। उनके तीक्ष्ण कटाक्षपात और मंद मुस्कान से सैनिकों के शस्त्र हाथों से गिर गए और वे स्वयं भी मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। कितना रुक्मिणी का सौंदर्य है। उसी समय वायु वेग से दौड़ने वाला श्री कृष्ण का रथ वहाँ आ पहुँचा। उस रथ में घंटे और घंटियाँ बज रही थी। ऐसा अपहरण नहीं है कि मतलब चोरी की तरह, यहाँ तो सिर्फ छीनने की बात है कि अपने पराक्रम से प्राप्त करना है रुक्मिणी को। तो भगवान कृष्ण चोरी की तरह नहीं आए, खूब घंटे और घंटियाँ बज रही रथ में। और रथ आया भगवान का, वैकुंठ में उत्पन्न घोड़े उसमें जुते हुए थे, वैकुंठ के घोड़े थे, उस पर गरुड़ ध्वज फहरा रहा था। अपने सैन्य बल से अन्य सैनिक संघों को छितराता हुआ व्रत वहाँ वैसे ही पहुँचा। जितने सैनिक थे सबको हटाता हुआ, भगाता हुआ, सबको भागना पड़ा। व्रत जो है ऐसे आया जैसे प्रबल वायु का झोंका कमल के वन को छिन्न भिन्न कर देता, ऐसे जो छिन्न भिन्न कर दिया सबको और रथ जो है वहाँ पर आ गया। शत्रुओं के देखते देखते व्रत स्त्रियों के झुंड में पहुँच गया। उस पर बैठे हुए श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को खींच कर अपने रथ में बैठा लिया और जैसे किसी गरुड़ ने अमृत कलश का अपहरण किया। गरुड़ जी आए थे स्वर्ग में, अमृत कलश का अपहरण किया था तो सब देवताओं को पराजित किया और अमृत का कलश लेकर के चले गए। उसी प्रकार से कृष्ण ने सबको पराजित किया और रुक्मिणी को लेकर के चले। उस समय देवता भी ये कौतुक देख रहे थे और श्री कृष्ण अपने उत्तम शस्त्र सारंग धनुष का टंकार करते हुए राजकन्या को हर के ले गए। धनुष का टंकार भी किया है कि आओ जिसकी हिम्मत हो, जिसकी हिम्मत है वो सामने आओ। तो भगवान धनुष के टंकार भी करते हुए और रस में भी कितने घंटे घंटियां बज रहे हैं, और जितने सैनिक उनको भी जो है फेंकते हुए इधर उधर आ गए। तब वेग पूर्वक चलकर भगवान जब अपने सैन्य शिविर में आए तो देवताओं और यादवों की धुंधुपियां एक साथ बजी। देवताओं की धुंधुपियां आकाश में और यादवों की संख्या, यादवों की धुंधुपियां पृथ्वी पर एक साथ बजी। इससे हर्षित होकर सिद्धों, सिद्ध कन्याओं और देवताओं ने श्री कृष्ण के रथ पर नंदनवन के फूलों की वर्षा की। नंदनवन के फूलों की वर्षा हुई उस समय, कृष्ण के ऊपर हुई तो रुक्मिणी के ऊपर भी कृष्ण रुक्मिणी एक साथ है। तब जय जयकार की ध्वनि के साथ श्री कृष्ण और बलराम उसी प्रकार चल पड़े जैसे शेर शेरों के बीच से अपना भाग लेकर चला जाता है। बड़े आराम से चल रहे हैं, शेरों के बीच में शेर चले ऐसे चल पड़े। रुक्मिणी हरण हो जाने पर बड़ा कोलाहल मचा, रक्षकों में ही परस्पर शस्त्र अस्त्रों से युद्ध होने लगा। रक्षक लोग आपस में लड़ने लगे एक दूसरे से, तुम्हारी गलती है नहीं तुम्हारी गलती है, एक दूसरे को मारने लगे। उधर राजा जरासंध के सभी राजा इस प्रकार अपमान को सह नहीं सके, वे कहने लगे ओ हम लोगों को धिक्कार है जो हम धनुर्धरों की इसको उन ग्वालों ने हर लिया जैसे शेर की कीर्ति को गिदड़ हर ले। अपने को शेर समझ रहे हैं और कृष्ण को गिदड़ समझ रहे हैं, इससे बढ़कर पराजय और क्या होगी। इस प्रकार लताड़े हुए राजा क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने शस्त्र अस्त्र संभाले, चौपड़ खेल बंद कर दिया और अपनी सेना के साथ लड़ मरने को तैयार हो गए। अत्यंत क्रुद्ध पौंडरक ने दो अक्षौणी सेना ली, विदुरथ ने तीन अक्षौणी सेना ली, दंतवक्र ने पांच अक्षौणी, राजपुर के राजा साल्व ने तीन अक्षौणी सेना। कितना हुआ फिर से सुनो, विदुरथ ने तीन अक्षौणी, ठीक है, फिर दंतवक्र ने पांच, आठ हुआ, राजपुर के अधिपति साल्व ने तीन, ग्यारह हुआ, जरासंध ने दस अक्षौणी, 21 हुआ, और वे सब महात्मा यादवों के साथ युद्ध करने के लिए उनके सामने उपस्थित हुए। इनके अतिरिक्त और भी बहुत सारे शिशुपाल के पक्षपाती हजारों वीर धनुष टंकारते हुए युद्ध करने के लिए श्री कृष्ण के सामने जा पहुंचे। मतलब कितने शत्रु हैं, कृष्ण के शत्रु जो है कितने हैं। अन्य पीछे दे पक्षिया योद्धुम श्री कृष्ण सम्मुखे धनुष टंकारयन्तस्ते सभा जगमहु सहस्रशः। उधर जब यादवों ने समुद्र के समान सेना को देखा तो भगवान कृष्ण ही जिनके जहाज के कर्णधार थे वे यादव वीर उस समुद्र को पार करने के लिए शत्रुओं के सामने जा डटे। उन दोनों सेनाओं का रोंगटे खड़े कर देने वाला बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, जैसे पहले किसी समय देव और दानवों का युद्ध हुआ था। उस समय रथियों से रथी, पैदलों से पैदल, हाथी से हाथी और घोड़े से घोड़ों, घोड़े घोड़ों से भिड़कर लड़ने लगे। शस्त्र वर्षा के अंधकार में रुक्मिणी को भयभीत देखा भगवान ने। रुक्मिणी जी भयभीत हो रही हैं, क्यों, क्योंकि अपने को वो दोषी मान रही हैं कि मेरे कारण भगवान के ऊपर इतना बड़ा संकट आ गया। तो भगवान ने देखा कि रुक्मिणी भयभीत हो रही हैं, तो भगवान कृष्ण ने प्रिय डरो मत ये कहते हुए उसे अभय दिया। तभी बलदेव का छोटा भाई गद अपना धनुष टंकारता हुआ उसी तरह शत्रु सेना के भीतर घुस गया। बलदेव जी का छोटा भाई गद, जैसे दावानल वन में घुस जाए, दावानल घुस जाए वन में तो सबको जला दे, ऐसी गद आए, गद के बाणों की वर्षा से शत्रुओं के अंग छिन्न भिन्न हो गए, उनके कवच कट गए, उनके घोड़े सारथी मर गए और वे स्वयं आहत होकर भूमि पर गिर गए। जैसे हवा के वेग से वृक्ष गिर जाते हैं वैसे गद के बाणों से पैदल सैनिकों के पैर कट गए जिससे वे धरती पर गिर गए। इस प्रकार कुछ घोड़े पर सवार थे सैनिक गद के बाणों से घायल होकर ऐसे गिरे जैसे कटेरे के फल गिर जाते हैं। घोड़ों से गिरे तो पट 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 करके जैसे फल गिरते हैं ऐसे गिरे। कितने ही हाथी गद के बाणों से कटकर गिर पड़े जैसे कुमड़े टुकड़े टुकड़े होकर छितरा जाए। उसी समय अपनी सेना को भागते देखकर महाबली साल्व ने अपनी गदा से गद को मारा। गदा युद्ध के प्रभाव को जानने वाले गद ने धनुष युद्ध त्याग दिया क्योंकि बहुत व्यथित थे। मूर्छित होते हुए वे उठ खड़े हुए और भगवान बलराम की दी हुई गदा लेकर युद्ध भूमि में जा डटे। भगवान विष्णु की गदा के समान 100,000 मन की भारी गदा गद ने उठाई। कितनी भारी? 100,000 मन की भारी गदा गद ने उठाई। वत्साल पर प्रहार किया जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों पर प्रहार किया। गदा के प्रहार से व्यथित साल्व को धराशायी देखकर पौंड्रक, जरासंध, दंतवक्र और विदुरत चारों गद पर कुपित होकर एक साथ आए। पौंड्रक ने अपने भीषण 10 बाणों से गद के रथ की ध्वजा काट डाली। दंतवक्र ने अपनी गदा से गद का रथ चूर चूर कर दिया और जरासंध ने गद के घोड़े मार डाले और विदुरत ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उनके सारथी को मार डाला। तभी भगवान बलदेव भयंकर मुख वाला अपना मूसल लेकर उससे दंत वक्र को मार दिया। बलदेव जी आ गए तो मूसल से दंत वक्र को मारा। मूसल के आघात से दंत वक्र का टेढ़ा दांत टूटकर धरती पर आ गया। दंत वक्र का मतलब है जिसका दांत टेढ़ा हो, वक्र माने टेढ़ा, तो उस कारण से उसका नाम पड़ा दंत वक्र। वही दांत टेढ़ा तोड़ दिया बलदेव जी ने। उसकी दुर्दशा देखकर भगवान कृष्ण और रुक्मिणी भी हंसने लगे। तभी बलदेव ने पौंड्रक, जरासंध और दुष्ट विदुरत को भी अपने मूसल से मारा। उस मूसल की मार खाकर खून से लथपथ होकर तीनों भूमि पर गिर गए। उनकी सहायता के लिए जो सेना आई उसे अपने हल से खींच खींच कर बलदेव ने मूसल से चूर्ण कर दिया। इस प्रकार 40 कोस तक सेना के पैदल सैनिक, हाथी, घोड़े, रथ चूर चूर होकर धरती पर बिखर गए। कितना? 40 कोस। 40 कोस का मतलब कितना?
120 किलोमीटर।
यहाँ से वृंदावन तक है 120 किलोमीटर तक की जितनी भी सेना है। कैसी सेना है? पैदल सैनिक हैं, हाथी हैं, घुड़सवार हैं, रथ हैं, सब चूर चूर होकर बिखर गए। 120 किलोमीटर तक की सेना। 10 योधन पर्यंतम रथे वास्तव प्रदातया प्रेषिता चूर्णिता भूमौ सयाना धरणी गता। आश्चर्य! मृत्यु से बचे हुए जरासंध आदि राजे भागकर शिशुपाल के पास गए और कहने लगे, हे राजन, तुम अपनी उदासी त्याग दो, अपनी उदासी त्याग दो। इस एक विवाह के बिगड़ने से क्या होता है, तुम्हारे 100 विवाह होंगे। जरासंध बोला, मैं आज ही द्वारका जाऊंगा और कृष्ण बलराम को बंदी बनाकर पूरी पृथ्वी को यादवहीन कर दूंगा आज ही। ये दुष्ट लोग जो है झूठ बोलने बड़े निपुण होते हैं। यहाँ तो कृष्ण बलराम आए तो कुछ कर नहीं पा रहे और ये द्वारका में जा करके उनको बंदी बनाएंगे। मित्रों के इस प्रकार समझाने पर शिशुपाल चंद्रिकापुर चला गया और मृत्यु से बचे बाकी राजे अपनी अपनी राजधानी को चले गए। एवं संबोधितो मित्र चैद्योगा चंद्रिकापुरम ययुस्तम तम पुरम सर्वे हतशेषा निपास्ततः। देखो ये बहुत रहस्य की घटना है कि पिछले जन्म में रावण ने जैसा राम के साथ व्यवहार किया था तो राम की विवाहिता पत्नी सीता का अपहरण किया था और राम को कष्ट पहुंचाया। तो उसी प्रकार से भगवान ने रावण को कष्ट पहुंचाया, लेकिन रावण की विवाहिता स्त्री का अपहरण नहीं किया, इसलिए भगवान का अधर्म नहीं होता है। भगवान ने बदला लिया, लेकिन किस प्रकार से बदला लिया कि जैसे उसी की पत्नी हो तो विवाह की पूरी तैयारी हो रही है, ऐसी मतलब स्थिति बना दी कि विवाह की पूरी तैयारी हो रही है कि वो समझ रहा है कि मेरी पत्नी है लेकिन विवाह नहीं है। तो भगवान ने जब अपहरण किया तो भगवान का अधर्म नहीं हो रहा है, भगवान को दोष नहीं लग रहा है। और भगवान राक्षस विधि से विवाह करते हैं लेकिन ये भी क्षत्रियों के लिए जो है शोभा है। तो राक्षस विधि से भगवान ने रुक्मिणी का विवाह किया लेकिन वही सीता जो है रावण के हाथ से उन्होंने मतलब छीनी, राम ने, और रावण को उसी प्रकार दुख पहुंचाया है। और भगवान दिखा रहे हैं कि तूने मुझे इस प्रकार से दुख पहुंचाया था, अब मैं तुझको उसी प्रकार दुख पहुंचा रहा हूँ। इसलिए पूरी स्थिति ऐसी बन गई कि शिशुपाल जो है बिल्कुल सजा हुआ है, पूजा हो रहे हैं, मंत्र पाठ हो रहा है, कितना सब जो है सब तैयारी हो रही है। उसी में ही जो है भगवान ने रुक्मिणी का अपहरण किया। नारद जी बोले, हे राजन, रुक्मिणी का अपहरण और मित्रों का मरण तिरस्कार सुनकर सब राजाओं के सामने भीष्मक का पुत्र रुक्मिणी ने प्रतिज्ञा की। अब रुक्मिणी बड़ा दुष्ट है, रुक्मिणी का भाई है, बड़ा दुष्ट है। प्रतिज्ञा की, यदि संग्राम में श्री कृष्ण को मारकर रुक्मिणी को लौटाकर ना लाऊं तो कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा, ये मैं सत्य कहता हूं। ये कहकर रुक्मिणी ने कवच धारण किया, सागर निर्मित शिरस्त्राण पहना, सौबीर देश का धनुष धारण किया, सालीलाट देश के दो तरकस और म्लेच्छ देश के खड्ग और कुटस देश की बनी ढाल ली, पेठर देश की बनी महाशक्ति, गुर्जर देश की गदा और बंग देश का परिघ और कोंकण देश का हस्त त्राण बांधा, गोह की खाल का बना अंगुली त्राण धारण करके किरीट और कुंडल और सोने का बाजूबंद पहनकर रुक्मिणी ने युद्ध करने की इच्छा की। चंचल घोड़े जोते हुए जैत रथ पर बैठकर दो क्षणी सेना साथ लेकर वो श्री कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ा। अब बलदेव जी ने जब देखा अरे सेना आ रही है तो अपनी सेना को लौटाया। अच्छा अभी अभी हिम्मत है आने की, आओ। तो बलदेव जी ने सेना लौटाई और बोले, खड़ा रहे खड़ा रहे। जो कहता और बार बार धनुष का टंकार करता हुआ रुक्मिणी बलदेव जी के सामने आया। उसने कहा, यदि जीवित रहने की इच्छा हो तो तुरंत मेरी बहन को छोड़ दो, यदि ना छोड़ोगे तो सेना समेत तुमको अभी यमपुरी पहुंचा दूंगा। राजा, याद के साथ से तुम धर्म भ्रष्ट हो गए हो और ग्वालों के जूठन चाटते फिरते हो, जरासंध के भय से तुम समुद्र में जा छिपे हो और काल्यवन के भय से यत्र तत्र भागते फिरते थे। ऐसा कहकर उसने तरह कर से बाण निकाला और धनुष पर चढ़ाकर कान तक खींचकर श्री कृष्ण के हृदय में मारा। बाण से ताड़ित होकर भी भगवान ने उसके धनुष की मजबूत प्रत्यंचा काटी। भगवान फिर भी दया कर रहे हैं कि साला है, उसने तो भगवान को जो है कहाँ बाण मारा, हृदय में बाण मारा, कान तक खींच करके बाण मारा, लेकिन भगवान ने केवल प्रत्यंचा ही काटी उसकी, उस पर दया कर रहे हैं भगवान। उसकी धनुष की प्रत्यंचा काटी जैसे गरुड़ सर्पिणी को काट डाले। तुरंत धनुष पर स्वर्ण भूषित प्रत्यंचा चढ़ाकर भगवान ने रुक्मिणी की प्रत्यंचा काटी थी। उसी समय रुक्मिणी ने 10 बाणों से श्री कृष्ण के रथ में प्रहार किया। तभी श्री कृष्ण ने अपने एक बाण से प्रत्यंचा सहित उसका धनुष भी काट दिया। अब धनुष भी काट दिया, पहले प्रत्यंचा काटी थी, अभी प्रत्यंचा के साथ धनुष भी काट दिया उसका। श्री कृष्ण ने अपने अमोघ बाण से धनुष को बीचों बीच दो टुकड़े करके रुक्मिणी को 100 बाण मारे। इस प्रकार धनुष कट जाने पर रुक्मिणी ने श्री कृष्ण पर अपनी चमचमाती हुई महाशक्ति चलाई। उसी समय श्री कृष्ण ने अपने गदा के प्रहार से शक्ति के दो टुकड़े कर दिए और उसके सारथी को मार डाला। वेग के साथ गिरकर और गदा ने घोड़े से रथ को भी चूर कर दिया। गदा, भगवान की जो गदा है, शक्ति के दो टुकड़े कर दिया और फिर गदा गिरी तो उसके रथ को भी चूर चूर कर दिया, घोड़ों से चूर चूर कर दिया, जैसे वज्र के आघात से पहाड़ चूर्ण हो जाते हैं, भगवान की गदा ऐसी है। तब रुक्मिणी ने श्री कृष्ण पर गदा का प्रहार किया। श्री हरि ने अपने चक्र से उसी गदा को चूर्ण कर दिया। लोहे सोने के बाजूबंद पहने रुक्मिणी ने बंग देश का परिघ ले उसे श्री कृष्ण के कंधे पर मारकर घोर गर्जना की। उस परिघ के आघात से भगवान तनिक भी नहीं हिले, जैसे माला की मार से हाथी नहीं हिलता है। परिघ मारा उसी प्रकार से जैसे हाथी को माला की चोट लगे, तो माला की चोट थोड़ी हाथी को लगी, परिघ की चोट भगवान को नहीं लगी। तब भगवान उस परिघ से ही रुक्मिणी को मारा और वही परिघ जो है भगवान ने पकड़ के उसको मारा, रुक्मिणी को मारा। परिघ के आघात से रुक्मिणी व्याकुल हुआ किंतु फिर श्री कृष्ण की निंदा करके ढाल तलवार संभाल ली। श्री कृष्ण ने अपने तलवार की मार से रुक्मिणी कि ढाल तलवार काट डाली, उसी तलवार की अग्र भाग से उसका कवच और शिरस्त्राण भी काट दिया। बाद में श्री कृष्ण द्वारा हस्त त्राण भी कट जाने पर नंगी मुट्ठी में ढाल तलवार लेकर रुक्मी भगवान के सामने जा डटा। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ने उसे अपने हाथों से पकड़कर जमीन पर पटक दिया। उसके ऊपर दया कर रहे हैं, अभी मारा नहीं है। फिर जैसे सिंह मृग पर सवार हो उसी तरह उसकी छाती पर चढ़ बैठे और क्रोध होकर अपना नंदक नामक खड्ग हाथ में ले लिया। देखो भगवान मार नहीं रहे, दिखा रहे हैं जैसे मार रहे हों, और रुक्मिणी को अवसर दे रहे हैं कि अपने भाई को बचा ले। ये तो मार दिया होता, लेकिन मार नहीं रहे, दिखा रहे हैं कि मैं मार रहा हूँ। उसकी छाती पर चढ़ गए और नंदक नामक खड्ग हाथ में लिया। श्री कृष्ण को अपने भाई रुक्मिणी का वध करने के लिए देखकर रुक्मिणी भयभीत हो उठी। श्री कृष्ण के पैरों पड़कर बड़ी करुणापूर्ण वाणी में बोली। रुक्मिणी देवी ने कहा, हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, हे योगेश्वर, हे अचिंत, हे जगतपते, हे करुणा सागर, मेरे भाई को मारना आपके लिए अनुचित है क्योंकि आपका साला है। अनंत देवेश जगन निवास है योगेश्वर अचिंत जगतपते त्वं हे तुम न योग्य करुणा समुद्र मद भ्रातरम साल भोजन महाभोजन। नारद जी बोले, हे राजन, इस प्रकार भय से बिलखती हुई, दुख से सूखे मुख वाली और रुंधे गले वाली अपनी प्रीतमा को देखकर श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के वध का विचार त्याग दिया। तो भगवान ने पहले से ही यही विचार किया था कि नहीं मारना है, लेकिन अब दिखा रहे हैं कि तुम्हारे कहने से मैं इसको नहीं मार रहा हूँ। तो रुक्मिणी को सम्मान दे रहे हैं भगवान कि मैं मार देता इसको, तुम्हारे कहने से नहीं मार रहा हूँ। फिर रुक्मिणी को भगवान ने अवसर दिया था, लेकिन इसको दंड तो मिलना चाहिए, दंड तो मिलना चाहिए। उसकी कमर बंद से उसको बांध दिया, उसी की कमर बंद से उसी को बांध दिया और तीक्ष्ण धार वाली तलवार से उसकी एक ओर की दाढ़ी मूछ काट दी, एक तरफ की दाढ़ी मूछ उस तीक्ष्ण धार वाली तलवार से ही दाढ़ी मूछ साफ की उसकी एक तरफ की, और आधे सिर के बाल काट दिए। तलवार से आधे सिर के बाल काट दिए। इसी बीच रुक्मिणी की दो अक्षौणी सेना जीतकर बलराम भी अपने सैनिकों के साथ वहाँ पहुँच गए। उन्होंने बंधे हुए रुक्मिणी को देखा, उसे ऐसी दशा में देखकर बलदेव जी को दया आ गई, अतः उसको बंधन मुक्त करके श्री कृष्ण को डांटते हुए बोले। अब कृष्ण को डांटने का अधिकार बलदेव जी को है, तो बलदेव जी डांट रहे हैं, हे कृष्ण, तुमने ये बड़ा निंदित कार्य किया है। साले के साथ ऐसा परिहास नहीं किया जाता है। जिसके सगे भाई को तुमने विरूप किया है, वो रुक्मिणी क्या कहेगी? इसके बाद रुक्मिणी से बोले, हे देवी, तुम शोक ना करो। अब कृष्ण को डांट रहे हैं, तो रुक्मिणी को समझा रहे हैं, तुम शोक ना करो, स्वस्थ हो जाओ। हे देवी, तुम शोक ना करो और मन को दुखी ना करो। मैं प्रिय अप्रिय सभी घटनाओं को काल प्रेरित मानता हूँ। जैसे वायु के बस में बादल रहते हैं, वैसे सारा संसार जिसके बस में रहता है उस काल को ही तुम ईश्वर समझो। जगत की सभी वस्तुओं का एकमात्र वही प्रभु है। मुख्य रूप से तो अहंता ममता ही बंधन का कारण है। इन दोनों से रहित भाव ही मोक्ष का कारण होता है। कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता। प्राणी का ये भ्रम है कि वो औरों को सुख दुख देने वाला मानता है। ये मेरा मित्र है, ये उदासीन है, ये शत्रु है, ऐसी भावना अज्ञान से उत्पन्न होती है। देव बलराम द्वारा इस प्रकार उपदेश पाकर रुक्मिणी का सारा वैमनस्य दूर हो गया और वे दोनों प्रसन्न हो गए। श्री कृष्ण बलराम ने जब रुक्मिणी को छोड़ दिया तो व्यर्थ मनोरथ हो अपने विरूप करण का स्मरण करता हुआ वो तपस्या की ओर उन्मुख हुआ। अब सोचा कि मैं तपस्या करूँगा। प्रमुख मंत्रियों के मना करने पर वो लौटकर कुंडनपुर नहीं गया। अपने निवास के लिए उसने भोजकट नगर बसाया। प्रतिज्ञा की थी कि कुंडनपुर नहीं आऊँगा। रुक्मिणी अगर कृष्ण को मारकर और रुक्मिणी को साथ लेकर के अगर मैं नहीं आया तो कुंडनपुर नहीं आऊँगा। तो कुंडनपुर नहीं गया तो भोजकट नाम का नगर बसाया। तब भगवान श्री कृष्ण और बलराम रुक्मिणी के साथ विजय सूचक दुंदुभी बजवाते हुए द्वारकापुरी आए। उनके वहां पहुंचने पर बड़ा उत्सव मनाया गया और मार्ग शीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण ने विधिवत रुक्मिणी के साथ विवाह किया। वारितो मंत्री मुख्य कुंडिनम नागदा पुनः चक्र भोजकटम नाम निवासाय पुरम परम रुक्मिण्यास गोविंद सरामो यदुर्वृता द्वारिकां प्रेयो राजन नादयन जय दुंदुभीन जाते महोत्सव पुर्याम जाते महोत्सव पुर्याम रुक्मिणी मृचिराननाम अपिय मे विधानेन मार्ग शीर्षे हरि स्वयं। जब श्री कृष्ण के साथ रुक्मिणी का विवाह हो गया तो वहाँ के स्वर्ण महल जगमगा उठे। उस समय इंद्र की अमरावती पुरी के समान द्वारकापुरी शोभित हुई। भगवती रुक्मिणी के विवाह की इस विचित्र कथा को जो प्राणी भक्तिपूर्वक सुनता या सुनाता है, आप लोग सुन रहे हैं, जो सुन रहे हैं सुन लीजिए कान खोल करके। भगवती रुक्मिणी के विवाह की इस विचित्र कथा को जो प्राणी भक्तिपूर्वक सुनता या सुनाता है वो भक्त श्लोक के सभी वैभवों का उपभोग करके अंत में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। हरेर विवाह सती रुक्मणि पते श्री रुक्मणि भूषित रुक्म मंदिरा पुरंदरस्यापि यथा मरावती द्वारावती पुण्यवती तथा बभौ भैस्मी विवाह से कथाम विचित्राम श्रृणोति या श्रावयते च भक्त्या यह भक्तो विवेन युक्ता स एव मुक्तिम प्रतियाति मुक्तः। इस तरह से हमने बहुत शीघ्रता में चार अध्यायों की कथा सुनाई है। ये बहुत सुंदर कथा है रुक्मिणी के चरित्र की। तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा? हाँ जी, हैंडबैग नहीं है।
उस दिन के बाद फिर दोबारा
और दूसरी बात, जब जब ये जा रहे थे तो उग्र अंदर से धीरे से जा रहे थे,
जैसे प्रवेश
किया जैसे वहाँ पर गए तो मशीन के अंदर से जो मेरी आवाज़ में बता था, तो ये बात निकली कि वो जो रथ भगवान का जो रथ था वो वैकुंठ में बना था,
ओखला में बना
था, वैकुंठ में बना था। तो ओखला में इंडस्ट्री एरिया है तो वहाँ पर भी
बनता है
तो उतने मिनट की देर से जब गाड़ी निकली तो गाड़ी के अंदर लगी मशीन से मेरी आवाज में जो प्रवचन निकला उसमें ये शब्द निकले कि भगवान का जो व्रत है वो वैकुंठ में बना था।
इस कथा में भी बात आई है ना, इस कथा में भी बात आई है कि जो रुक्मी था उसके शास्त्र शास्त्र सब अलग अलग मैन्युफैक्चर थे, अलग अलग कंपनी के थे, अलग अलग देश से थे।
ये बात वर्णन आया रुक्मी जब भगवान शिव के जन्म के चला तो उसका जो हस्त त्राण है वो कहीं बना था, सिर त्राण नहीं बना था, गदा कहीं बनी, कवच नहीं बना, अच्छा मैं इसको कर रहा हूँ। तो रुक्मी ये जो रुक्मिणी का विवाह है निषेध हुआ, नारद जी ने रुक्मिणी को बताया कृष्ण के बारे में, तो रुक्मिणी का प्रेम हो गया कृष्ण से, और कृष्ण को रुक्मिणी के बारे में बताया तो कृष्ण को रुक्मिणी से प्रेम हो गया, और राजा भीष्म जानते थे कि रुक्मिणी कृष्ण से प्रेम करती है और कृष्ण रुक्मिणी से प्रेम करते हैं, उन्होंने विवाह भी से कर दिया। लेकिन फिर कैसे वो विवाह रद्द हुआ, रुक्मिणी ने विवाह को रद्द कर दिया, कृष्ण के साथ विवाह को रद्द कर दिया, और किससे विवाह ने से किया, शिशुपाल, और शिशुपाल के सिद्धांत का कौन है, रावण है, और कृष्ण किसी जन्म के राम है, और रुक्मिणी किसी जन्म की सीता जी, तो दुष्ट एक दुष्ट है जो सीता का भाई रावण के साथ निश्चय कर रहा है। लेकिन भगवान की योजना है, भगवान की योजना है कि रावण के साथ सीता का विवाह निश्चित हो और अपहरण करेंगे, हैं क्यों क्यों ऐसा करेंगे भगवान, पिछले जन्म में रावण ने भी जो है राम की पत्नी सीता का अपहरण किया था, तो राम भी जो है इस बार ऐसे ही करेंगे, लेकिन राम में अधर्म नहीं है, इसलिए जब विवाह के पहले ही भगवान अपहरण करते हैं, तो रावण ने जो सीता का अपहरण किया वो अधर्म था, फिर तो राम की विवाहिता पत्नी का अपहरण किया, ये राम ने जो रुक्मिणी का अपहरण किया उसमें अधर्म नहीं था, ये प्रशंसा की बात है। भगवान ने रुक्मिणी के साथ राक्षसी विधि से विवाह किया, ये प्रशंसा की बात है। और जब भगवान रुक्मिणी का अपहरण करने के लिए आए तो रुक्मिणी ने पत्र में ये संदेश दिया था, और संदेश ये दिया था कि मेरे जो संबंधी हैं उनको आप मारिए नहीं, उनको मत मारिए, उनको मत घायल करिए और मेरा अपहरण कर लीजिए, और इसके लिए विधि बताइए कि मेरे जो है घर के लोगों को मतलब कोई मतलब चोट ना पहुँचे और मेरा अपहरण कर लें, इसके लिए क्या विधि बताई थी, विवाह के एक दिन पूर्व जब मैं जाऊंगी हाँ तो मेरे घर के लोग नहीं रहेंगे साथ में, मेरे घर के लोगों को चोट ना पहुँचे और आप घर मेरा अपहरण कर लीजिए, तो रुक्मिणी चाहती थी, लेकिन रुक्मिणी ने भगवान को मार डालने का प्रयास किया, तो भगवान ने रुक्मिणी को मारा नहीं लेकिन उसको दंड दिया, दंड मिलना चाहिए था, क्या दंड दिया, सिर के एक तरफ के बाल काट दिए, मोड़ दिए, दाढ़ी मूछें भी आधी आधी मोड़ दी, इस तरह से दंड मिलना चाहिए। और जब भगवान ने मारने का प्रयास किया तो मारा नहीं, मार सकते थे ये नहीं मारा, दिखा रहे कि मैं मार रहा हूँ, क्यों, रुक्मिणी को अवसर दे रहे हैं कि अपने भाई को बचा लो, तो वो समझेगा कि हाँ मेरी बहन ने बचाया मुझे, समझेगा कि हाँ मेरी बहन ने बचाया। श्री रुक्मिणी देवी आविर्भाव दी महापौर की, जगद्गुरु शिल प्रभु आदि की, श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौरताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद सिंह देव की जय,
सीता मित्र प्रभु की।